नमस्कार भारत, 26 जून बुधवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो।
And I want to give you a little bit of a preview, a sneak preview of my mission and tell you why I truly believe that our two nations have an incredibly unique
opportunity. हुर्रियत से बातचीत की उम्मीदों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा।
उससे पहले भी बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ प्रोग्रेस हुई कश्मीर में, तो अब ये तो एक उम्मीद सी जाग गई है कि अब इन्होंने बोला है कि मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग।
और सुनिएगा सचिन तेंदुलकर के 27 साल पुराने यॉर्कशायर के किस्से।
इसको शौक था तो हम रात को पिज्जा खाते थे, दो मंगाते थे, छह आदमी एक पिज्जा खाते थे और एक अकेला सचिन खा लेता था।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। माइक पोम्पियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। भारत में नई सरकार के गठन के बाद भारत और अमेरिका के बीच यह पहली आधिकारिक मुलाकात होगी। अमेरिका में कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग के प्रमुख जॉन सैंडर्स ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्हें यह पद संभाले अभी दो महीने ही हुए थे। उन्होंने कहा है कि वे अगले महीने इस्तीफा दे देंगे। सैंडर्स ने इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक सैंडर्स और दूसरी एजेंसियों के प्रमुख मैक्सिको की सीमा पर रहने वाले प्रवासियों के हालात से बेहद परेशान हैं। टैक्सन शहर के एक शरणार्थी शिविर का दौरा करने वाले वकीलों ने बताया है कि वहां पर रह रहे बच्चों की हालत बेहद खराब है। ऐसी ही एक वकील एलोरा मुखर्जी ने बीबीसी से कहा कि उन्होंने जो देखा उससे वो बहुत परेशान हो गईं। एलोरा मुखर्जी ने बताया,
I've been working with children and families in federal immigration custody for more than 12 years now. I have never seen conditions.
मैं बीते 12 सालों से प्रवासी बच्चों और परिवारों के कस्टडी का काम देख रही हूं। मैंने इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं देखे। बच्चों को नहाने तक की सुविधा नहीं है। वो वही पुराने कपड़े पहन रहे हैं जो उन्होंने सीमा पार करते हुए पहने थे। उसमें उनका मल मूत्र लगा हुआ था। ये थे एक वकील एलोरा मुखर्जी के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी नेताओं से अपील की है कि वो बहरीन में आयोजित कॉन्फ्रेंस में रखे गए आर्थिक प्रस्ताव को स्वीकार कर दुश्मनी खत्म करें। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने किया था। उन्होंने कहा था कि इसके जरिए वो इसराइल और फलस्तीन के बीच शांति स्थापित करना चाहते हैं। फलस्तीनी नेताओं ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा था कि शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक समाधान जरूरी है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि बहरीन में पेश किए गए आर्थिक प्रस्ताव को लागू करने से फलस्तीन के लोगों का भला होगा। ट्रंप ने कहा,
It's too bad this is happening. They're living badly right now. Their country's not doing well economically at all. That can be changed very quickly, very easily.
जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत बुरा है। फिलहाल वो बहुत बुरे हालात में जी रहे हैं। उनका देश आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम नहीं कर रहा। यह बहुत जल्दी और आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के नेताओं को आपसी दुश्मनी खत्म करनी होगी। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादर ने अल सल्वाडोर के उन दो लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया है जो अमरीकी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान समुद्र में डूबकर मारे गए। ऑस्कर मार्टिरेज रमीरेज और उनकी बेटी वलेरिया के शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रमीरेज ने अपनी बाहों में वलेरिया को लपेटा हुआ था। श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने वाली एक चैरिटी संस्था ने बताया है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वह जरूरतमंद परिवारों को खाना देना बंद कर दे। जनपोष नामक इस संस्था का कहना है कि वह सालों से बीमार और गरीब लोगों को अस्पताल में खाना मुहैया करवाते हैं। इसके पीछे किसी जाति या धर्म की पहचान नहीं की जाती, लेकिन अब इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो संस्था के स्टाफ को सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि दुनिया भर में 35 मिलियन लोग दवाओं से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं। यूएनओडीसी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि दवाओं के ओवरडोज की वजह से उत्तरी अमेरिका में होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, जबकि अफ्रीका में ट्रेमाडोल नामक खतरनाक दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके साथ ही अफीम का उत्पादन और कोकीन का निर्माण रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंच गए। आज वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय आधिकारिक मुलाकात होगी। पोम्पियो का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक मसलों पर खींचतान होती रही है। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद, ईरान से तनाव, व्यापारिक मसलों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है। ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से।
दो दिवसीय दौरे के लिए भारत आए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, चरमपंथ और रक्षा से जुड़े मसलों पर बातचीत होने की संभावना है। अमरीकी गृह विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार माइक पोम्पियो भारत और अमरीका के बेहतर संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर एक भाषण भी देंगे। इसी महीने की शुरुआत में अमरीका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित भारत अमरीका व्यापारिक सम्मेलन में माइक पोम्पियो ने भारत और अमरीका के एक साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। उस सम्मेलन में माइक पोम्पियो ने कहा था, मेरा पूरा विश्वास है कि हम दोनों देशों के पास ये बेहतरीन मौका है कि हम साथ में आगे बढ़ें, जिससे हमारे नागरिकों का भला हो सके। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र और समूचे विश्व के लिए यह लाभकारी होगा। ये थे अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से विशेष व्यापार का दर्जा वापस ले लिया था। इसके बाद भारत ने भी अमरीका से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी। माइक पोम्पियो के इस दौरे से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में आई खटास को कम करने की कोशिश भी की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कुछ दिन पहले जब माइक पोम्पियो के भारत दौरे की जानकारी साझा की थी तो उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की थी कि व्यापार के मोर्चे पर दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच उभरे व्यापारिक मसलों से इतर दोनों देशों का व्यापार $150 बिलियन तक पहुंच चुका है और यह लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 500 अमेरिकी कंपनियां भारत में चल रही हैं। अमेरिका ने रक्षा मामलों में भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बनाया है। ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के शब्द। ईरान के साथ अमेरिका के टकराव पर भी भारत की लगातार नजर है। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से सख्त मना किया है। इसके अलावा रक्षा उपकरणों की खरीद के सिलसिले में माइक पोम्पियो का भारत दौरा अहम समझा जा सकता है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए अमरीकी विदेश मंत्री का दो दिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके आने वाले भविष्य में कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे नवीन नेगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इसी महीने G20 सम्मेलन में होने वाली मुलाकात की भूमिका तैयार करेगी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह मंत्रालय संभालने के बाद अपनी पहली भारत प्रशासित कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कश्मीर में राज्यपाल प्रशासन का दावा है कि घाटी में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उनका ये दौरा इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि सूबे के राज्यपाल ने अलगाववादियों से बातचीत के संकेत दिए हैं, जिस पर अलगाववादियों की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। सूबे के सियासी तबके अमित शाह के इस दौरे को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल के पांचों वर्ष के दौरान भारत प्रशासित कश्मीर में अस्थिरता रही। बड़ी संख्या में चरमपंथी सुरक्षाकर्मी और आम लोग मारे गए, यहां तक कि पिछले वर्ष जून से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा सरकार ने संकेत दिए हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र की प्रक्रिया, पर्यटन और प्रगति को बहाल करने के लिए शांति प्रक्रिया शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इसी संदर्भ में हो रहा है। हालांकि बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पर भी हाजिरी देंगे, परंतु उनका दौरा राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस इशारे के संदर्भ में हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अलगाववादी गुटों के संयुक्त मंच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता बातचीत के लिए तैयार हैं। हुर्रियत ने इस बयान के बाद घोषणा की कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में शांति बहाली की किसी भी पहल का समर्थन करेगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट,
ईरान और पाकिस्तान को ये बात ही बहरहाल समझना पड़ेगी कि वो तो न जंग लड़ सकते हैं और न ही किसी और तरीके से मामलात को उलझा करके आगे बढ़ सकते हैं। उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा और इस बातचीत में कश्मीर के मसले के हल की राहों की तलाश में निकलना पड़ेगा।
अमित शाह आज एक दिन की यात्रा के लिए घाटी पहुंचेंगे और इनके दौरे से पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर जोर दिया है कि वो मिलिट्री मस्कुलर पॉलिसी को बातचीत और शांति प्रक्रिया से बदल दें। पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली से कहा है कि वो इस सिलसिले में पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लें। आईएएस टॉपर शाह फैसल के राजनीतिक गुट के साथ चुनावी समझौता करने वाले पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद कहते हैं,
हमारा मशवरा नई दिल्ली को यही होगा कि आप बगैर किसी शर्त के न सिर्फ हुर्रियत बल्कि अस्करी क़यादत के साथ भी मसलक कश्मीर के तवारीखी पस मंजर में कश्मीरियों की कुर्बानियों की रोशनी में बात करें और मस्कुलर पॉलिसी को तर्क करके अमित शाह जी एक नए दौर का आगाज करें अगर वो बाकी हिस्ट्री कायम करना चाहते हैं।
इंजीनियर रशीद का कहना है कि भारत को चरमपंथी नेतृत्व को भी डायलॉग में शामिल करना चाहिए। गौरतलब है कश्मीर में अलगाववादियों या चरमपंथियों के साथ भारत सरकार की बातचीत कोई नई बात नहीं है। पिछले 25 वर्ष के दौरान ऐसे कई प्रयास विफल हो चुके हैं क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और भारत की विभिन्न सरकारें बातचीत के लिए अपनी अपनी शर्त लगाते थे। यही वजह है कि विश्लेषक बातचीत के बारे में ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे। पत्रकार और विश्लेषक रियाज मलिक,
आज की जो ये ताज़ा पेशरफ्त है मुज़ाकरात के हवाले से, अगर हुकूमत हिंदुस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से जो दोनों फरीकीन है वो इसको गैर मशरूत बना दे तो ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सकता है।
गृह मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्ष के दौरान चरमपंथियों के विरुद्ध जारी सैन्य ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान अब तक 700 चरमपंथी मारे गए। इस बीच ऑपरेशनों के दौरान झड़पों के निकट प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाइयों में भी दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। यासीन मलिक, शबीर शाह और नईम खान समेत दर्जनों अलगाववादी जेलों में हैं। जमा इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को देशद्रोही जतलाकर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ के अधिकतम युवा इस स्थिति को बातचीत के लिए अनुकूल नहीं समझते, परंतु कुछ को अब भी आशा है कि हालात बहाल हो जाएंगे।
देखिए, बातचीत के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर का होना जरूरी होता है और पीस के लिए पहला स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है। 5 साल से मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, हुर्रियत वाले जेलों या घरों में नजरबंद है, नौजवानों का पुलिस पीछा कर रही है, मुसल्ला नौजवानों को मिलिट्री कॉर्डन में मार दिया जाता है। ऐसे में आप किस टॉपिक पर बातचीत करेंगे? पहले ग्राउंड सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं तो बातचीत के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन जाएगा।
क्योंकि बुरहान वानी के बाद जो मसला यहाँ कश्मीर में हुआ वो तो बदतर ही हुआ, तो उससे पहले भी बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ प्रोग्रेस हुई कश्मीर में। तो अब ये तो एक उम्मीद सी जाग गई है कि अब इन्होंने बोला है कि मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग।
5 बार से लगातार मारधाड़, सैन्य ऑपरेशन, हिंसक प्रदर्शन और प्रतिबंधों के बीच जीने वाले घाटी के नागरिक जानते हैं कि 30 वर्ष से बातचीत और शांति बहाली के कई प्रयास विफल हो गए हैं, परंतु फिर भी अमित शाह के दौरे से कई वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
झारखंड में भीड़ के हाथों 24 वर्षीय युवक तबरेज अंसारी की पीट पीट कर हत्या के बाद भीड़ की हिंसा के खिलाफ आज देश के 50 से अधिक शहरों में प्रदर्शन होंगे। वहीं तबरेज के परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तबरेज की मौत को मानवता पर कलंक बताया है। दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
जय श्री राम बोलते बोल भाई, एरा बोल जय श्री राम बोल,
हां बोल
जय श्री राम,
और अकबर बोल
जय श्री राम।
कट्टर हिंसक भीड़ उग्र आवाज में जय श्री राम का नारा लगाते हुए पेड़ से बंधे तबरेज अंसारी को जय श्री राम और जय हनुमान बोलने का आदेश देती है। मजबूर, बेबस और दम तोड़ती आवाज में वो जय श्री राम कहते हैं, लेकिन इससे भीड़ शांत नहीं होती और उन पर हमले जारी रहते हैं। तबरेज अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत का वायरल वीडियो दुनिया भर में देखा गया है। उनके चाचा मकसूद अंसारी कहते हैं,
हमको वीडियो मिला, उसको देखे वीडियो को, वीडियो को देखने के बाद बहुत ही खराब लगा और सबको जल्दी से दिखाए हम ऐसे से बात है बोल के। तो उसके बाद हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाके वकील से बात किए दूसरे दिन, तो वकील से बोले कि देखिए इसकी हालत ऐसी है और वीडियो देखे, तो वकील साहब भी बोले कि हम पहले ही वीडियो देख चुके हैं।
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले तबरेज 17 जून को भीड़ के हमले का शिकार हुए थे। पुलिस ने उन्हें चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके इलाज में लापरवाही की गई। मकसूद कहते हैं,
एक दिन बाद पता चला कि उसको आनंद फानन में उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया है। जब सदर हॉस्पिटल पहुंचे तो देखे उसके ऊपर एक चादर डाला हुआ है और तो मिलने नहीं दिया गया एक घंटा तक, 8:30 बजे तक वहाँ प्रशासन हम लोग को रोक के रखा और एक घंटा के बाद बोले कि एक आदमी अंदर जा सकता है। जो मैं खुद अंदर गया तो डॉक्टर बोले आप कौन है, मैं बोला उसका चाचा हूँ, तो बोले कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, डेट कर गए। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद उसके नाक से उबाल आ रहा था, मतलब सांस उसमें चल रहा था। उस समय तकरीबन 11:30 बज रहा था, मतलब डॉक्टर 8:30 बजे बोल दिए मृत्यु भी हो गई है, और 3 घंटा के बाद भी उसमें जान, सांस चेक किए थे चल रही थी हल्का हल्का एकदम, और नाक से बुलबुला भी आ रहा था। तो शोर शराबा करने के बाद उसको फिर जाके ECG टेस्ट किया गया, तो पता चला 10% जान अभी है उसमें ECG टेस्ट के हिसाब से।
तबरेज की मौत के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का सवाल एक बार फिर उठा है। विपक्षी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए एक ट्वीट में कहा,
झारखंड में एक युवा की भीड़ के हाथों बर्बर हत्या मानवता पर कलंक है। इस दम तोड़ते हुए बच्चे को 4 दिन हिरासत में रखने वाली पुलिस की क्रूरता उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी राज्य और केंद्र में सत्ताधारी BJP के ताकतवर नेताओं की खामोशी।
वहीं आज भीड़ की हिंसा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों का आह्वान किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान ने बताया,
लगातार मॉब लिंचिंग के घटनाएं हो रही हैं और उस पर गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तमाम जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं उन सब के विरोध में प्रोटेस्ट है, जिसमें इमीडिएट डिमांड ये है कि तबरेज अंसारी के जिन लोगों ने लिंच किया है वो उनको पकड़ा जाए। उसके अलावा 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं जो तबरेज अंसारी के साथ में थे, उनको ढूंढा जाए। और वो पुलिस वाले जो उस एरिया के इंचार्ज थे, लगातार ये घटनाएं हो रही थी उसके बाद भी उन्होंने नहीं रोका, उनका सस्पेंशन नहीं हो बल्कि उनके अगेंस्ट में FIR हो। सब डिमांड्स को लेके हमारा प्रोटेस्ट है और लगभग 50 जगह से अधिक हो चुके हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट होगा।
इसी बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि श्रीराम की मर्यादा गला दबाकर नहीं गले लगाकर होगी।
एक बात बहुत साफ है, श्रीराम के जो सिद्धांत हैं, श्रीराम की जो मर्यादा है वो गला दबाने से नहीं पूरी होगी बल्कि गला लगाने से पूरी होगी। गले दबा करके नहीं हो सकती बल्कि गले लगा के हो सकती है। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो किसी भी रूप में भगवान राम की मर्यादा और भगवान राम के सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के साथ नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है।
दूसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार उनका मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सवाल यही है कि क्या भीड़ की हिंसा रोके बिना वो सबका विश्वास हासिल कर सकेंगे।
दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट सुन रहे थे आप। मोटर वाहन संशोधन विधेयक को सरकार की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है और अब सरकार इसे संसद में पारित कराएगी। हालांकि ये बिल पहले भी लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस विधेयक को पास करा लेगी। इस विधेयक के कानून बनने से क्या कुछ बदलेगा और सड़क पर आम आदमी की सुरक्षा कितनी बेहतर होगी, यही पूछा BBC संवाददाता प्रदीप कुमार ने सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था सेव लाइफ फाउंडेशन के प्रमुख पीयूष तिवारी से।
देखिए, पिछले दशक में भारतवर्ष में करीब 12 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं सड़क दुर्घटनाओं में और करीब 10 गुना ज्यादा उससे लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। इनके जो बड़े जो कारण हैं, जो बिहेवियर से रिलेटेड हैं, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जो कि पुलिस एनफोर्समेंट से रिलेटेड हैं और जो कि ट्रॉमा केयर से रिलेटेड हैं, वो उनको सही तरीके से हमारे सिस्टम में लाने के लिए एक नए कानून की जरूरत बहुत समय से महसूस हो रही थी। और जो कार्य 2014 में शुरू हुआ था श्री गोपीनाथ मुंडे जी जो कि यूनियन मिनिस्टर थे उनके सड़क दुर्घटना में देहांत के बाद, वो होपफुली अब जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि भारत सरकार जो है वो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो कि सड़क सुरक्षा का जो कानून है उसको अमेंड करके लोकसभा में ला रही है। और इसमें 3 या 4 चीजें जो है वो ध्यान रखने वाली हैं। पहला तो ये है कि कई ऐसे सिस्टम जो कि पुराने हो गए थे और जो कि अभी नए समय के हिसाब से ठीक से नहीं चल रहे थे, जैसे हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है आज के दौर में जो कि किसी को भी अलाउ कर देता है गाड़ी चलाने के लिए विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग विदाउट प्रॉपर मैकेनिज्म, वो उस प्रोसेस को अपडेट करा जा रहा है। दूसरा जो चीज़ें ये हैं कि वो सड़क यात्री जो कि एक दुर्घटना में घायल होने या अपनी जान गंवाने के सबसे ज़्यादा जिनके चांस होते हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन है, साइक्लिस्ट है, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पहली बार प्रावधान लाए जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों के लिए अब तक हमारे कानून में चाइल्ड हेलमेट का प्रोविजन नहीं है, तो वो चाइल्ड हेलमेट्स आ रहे हैं। सड़क की जो कंडीशन होती है या खराब कंडीशन होती है उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं और मौतें होती हैं उसके लिए अभी जो इंजीनियर होते हैं कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें भी कानून में लाया जा रहा है। ज्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं वो तब होती हैं जब कोई रेड लाइट जंप कर रहा होता है, तो एक, एक जानलेवा हरकत है ये, तो उसके लिए इन 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 चीजों के लिए जो फाइन थे वो बहुत ही कम थे पहले, तो आज के दौर के हिसाब से जो सही जो इन्फ्लेशन लगा के जो फाइन होना चाहिए वो उसको अपडेट करा जा रहा है फाइन्स को, और जिन चीजों के लिए फाइन नहीं था जैसे कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, एम्बुलेंस को रास्ता ना देना है, उन चीजों के लिए भी अब पेनल्टीज जो है वो कानून में इनकॉर्पोरेट हो रही है।
नशा करके जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत है जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रावधान बदले जा रहे हैं क्या?
देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है शराब पी के, वो एक तरीके से ये जान के गाड़ी चला रहा है कि उसकी इस हरकत की वजह से किसी की जान जा सकती है, तो उसको अगर वो उसके बाद कोई दुर्घटना करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि 304 पार्ट 2 जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है जिसमें कि 7 साल की सजा होती है, वो चार्जेस उस पर लगाए जाएं। उसके अलावा जो मोटर व्हीकल जो एक्ट है जो कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है उसमें जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए, दुर्घटना तो एक बात होती है लेकिन सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए जो अभी जो फाइन जो है अभी जो मिनिमल फाइन है 2,000-3,000 रुपए के, उसको अपडेट करके 10,000 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है पहले ऑफेंस के लिए और गाड़ी इम्पाउंड करी जाएगी, और दूसरे ऑफेंस के लिए 15,000 रुपए फाइन और जेल टर्म।
ये थे सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ पीयूष तिवारी। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का, और मेरे साथ तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन नेगी।
जी कुलदीप, आज दिल्ली से प्रकाशित तमाम समाचार पत्रों में लोकसभा में कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। मोदी ने कल लोकसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा था और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर किया। इसी के सिलसिले में अलग अलग अखबारों ने अलग अलग सुर्खियों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस इतनी ऊंची हो गई कि जड़ों से उखड़ गई। और नवभारत टाइम्स ने भी मोदी का एक बयान छापा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश को बना दिया था जेलखाना। तो अलग अलग बयानों को जो है अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है अपने।
कल 25 जून था, आपातकाल की याद भी उन्होंने कांग्रेस को दिलाई।
जी, और इसके साथ ही एक और खबर जो हर एक अखबार में है वो है अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे की। इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि आज पोम्पियो विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे, और इसके साथ ही मोदी ट्रंप की मुलाकात का स्टेज भी जो है इस बैठक के साथ ही जो है तैयार करने की बात कही गई है। हिंदुस्तान टाइम्स और इसके अलावा दैनिक भास्कर में एक और खबर प्रकाशित है जिसमें बताया गया है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जिस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति देश में सबसे ज़्यादा खराब है। और इस रिपोर्ट ने बताया है कि देश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ जिस राज्य में हैं वह है केरल।
और एक खबर का मैं जिक्र कर दूं, जनसत्ता अखबार में सबसे नीचे खबर है पहले पन्ने पर, 200 करोड़ की शादी से निकला 200 टन का कूड़ा, खर्च वसूली का फरमान। ये बात हो रही है उत्तराखंड की चर्चित बहुचर्चित गुप्ता बंधुओं के बेटों के विवाह की, जिसमें अब तक 235 क्विंटल कूड़ा उठाया गया है। और ये हिम क्रीड़ा स्थल चमोली जिले के औली में 20 और 22 जून को गुप्ता बंधुओं के बेटों की 200 करोड़ के खर्चे से ये शादी हुई थी, और इस पर अब विवाद हो गया है।
जी, एक और खबर दैनिक जागरण में प्रकाशित है जिसमें बताया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े जो कारोबारी हैं मेहुल चोक से, उनकी वापसी जो है भारत हो सकती है, यानी कि वो एंटीगुआ में फिलहाल हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे उनको भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है अब तेज़ी मिलने की बात सामने आ रही है।
बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए नवीन नेगी। मशहूर इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर क्रिकेट टीम से जुड़े रहे सॉली एडम ने भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को यॉर्कशायर लाने में अहम भूमिका निभाई थी। सचिन यॉर्कशायर में उन्हीं के घर पर रहे थे। बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल के साथ सॉली एडम ने 27 साल पुराने वे किस्से साझा किए, सुनिए।
दो किस्म के लोग होते हैं, एक को गॉड गिफ्टेड होता है तो वो मेहनत नहीं करता। सचिन के पास गॉड गिफ्टेड था और मेहनत, इसीलिए आज वो गॉड ऑफ इंडिया वाले उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं।
आपने कब फैसला किया कि आप सचिन तेंदुलकर को यॉर्कशायर लेके आएंगे?
यॉर्कशायर में खैर खेलने का चांस तो इतना इजी नहीं था, बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहरहाल मुझे 2-3 मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, उनसे बहुत झगड़ा करना पड़ा। एंड में वो राजी हुए कि चलो बॉलर तो ठीक है, हमें बॉलर नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बॉलर चाहिए था, कोई बैट्समैन हो तो वो बैट्समैन ले लेते। तो फिर मैंने सचिन तेंदुलकर का रेकमेंड किया, ये पहले तो मना कर रहा था, बहरहाल पर्सुएड किया उसको सुनील गावस्कर ने, और मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की तो वो खेलने के लिए तो राजी हो गया।
और जब सचिन यहाँ पे आए इनिशियली कहाँ रह रहे थे?
उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सलीम भाई मुझे रहना सेपरेट घर देना, लेकिन ड्यूसबरी में रहना, तो ये कि खाने पीने की मुझे तकलीफ नहीं होगी, कपड़ों की तकलीफ नहीं होगी धोने, क्योंकि उस बेचारे को तो कुछ आता नहीं था, तो या तो मेरी भाभी धो देती थी या मेरी वाइफ धो देती थी, वो बेसिक अपना खाना खा लेता था। उसको खाने में कभी उसने वो ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना यही खाना, जो दे देते वो खा लेता था। लेकिन ये कि शौकीन था तो इसको शौक था, तो हम रात को पिज्ज़ा खाते थे, दो मंगाते थे, तो छः आदमी एक पिज्ज़ा खाते थे और एक अकेला सचिन खा लेता था।
आपने बोला था कि आप सचिन को ब्लैकपूल एक बार लेके गए थे।
इट वॉज यूनिक, ब्लैकपूल बहुत खूबसूरत जगह है, तो हम लोग सब जगह अच्छा बहुत मज़ा आया, राइड की सब ये किया, उसको कोई राइड उसने छोड़ी नहीं, हर राइड में वो बैठा। हम लोग स्नूकर बिलियर्ड जब खेलने गए तो वो कभी खेला नहीं था पहले, और उसने शुरू किया, विद इन 10 मिनट्स वो दूसरों से अच्छा खेलने लगा।
विनोद कांबली जो कि सचिन तेंदुलकर के इतने अच्छे दोस्त थे, उनका क्रिकेटिंग करियर इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा?
विनोद मेरे लिए 2 साल मेरे अंडर कैप्टनशिप में खेला, वो बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर था, बहुत टैलेंटेड, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं था। सचिन के पास टैलेंट के अलावा हार्ड वर्कर था। क्रिकेट जो है ना वो मेहनत मांगता है।
क्या आपने सचिन का पहला मैच देखा जो उन्होंने यॉर्कशायर में खेला था?
हम लोग साथ ही गए थे, उसने काफ़ी प्रैक्टिस ये की, फिर उसके बाद मुझे वो कहने लगा सलीम भाई एक काम करना है यार, 100 करना है मुझे। ठीक है, जब उसने 50 किए तो मैं बहुत खुश हुआ, 60-70, उसके बाद 84 या 86 में वो आउट हो गया। आप माने वो बहुत डिसअपॉइंटेड था कि ना यार देखो मैं 100 नहीं कर सका, तो उसको 84 या 86 करने की खुशी इतनी नहीं थी जितना उसको आउट होने का गम था।
सचिन का जो लास्ट नाइट था ड्यूसबरी में, उसके बारे में बताइए।
रात को 11:30 बजे मेरे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ, सचिन दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। मैंने कहा सचिन तुम क्या कर रहे हो? कहना सलीम भाई मैं जा रहा हूँ, मैं आपके और भाभी के फीट पैर छूने आया हूँ। मैंने तो 300-400 क्रिकेटर बुलाए होंगे, ये वाहिद बंदा था कि जो जाने से पहले मेरे और मेरी वाइफ के पैर छू कर गया।
सचिन तेंदुलकर के पुराने किस्से सुना रहे थे सॉली आजम। अब आपको खेल की दुनिया का हाल सुना दें। इंग्लैंड में चल रहे क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 64 रनों से हरा दिया और सेमीफाइनल में अपनी सीट सबसे पहले पक्की कर ली। इंग्लैंड के लिए अब इस विश्व कप में आगे की राह मुश्किल हो गई है। अंतिम चार में जगह बनाने के लिए उसे अपने बचे हुए दोनों मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। और आज विश्व कप में कौन सा मुकाबला होना है, सुनिए ज्योतिका सिंह से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का 33वां मैच आज यानी कि 26 जून को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। दोनों देशों ने टूर्नामेंट में अब तक 6 मैच खेले हैं। आइए जानते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पर प्रेशर जरूर रह सकता है आज।
देखिए प्रेशर तो रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अब पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए चारों के चारों मैच जीतने हैं। और उधर न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड तो मोरलेस लास्ट 4 में आ जाएगा मेरे को लगता है। क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट उनके पास टीम है जो कि सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकती है। अगर पाकिस्तान बहुत ही अच्छा मैच खेलती है तब जाके न्यूजीलैंड से जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम काफी बेहतरीन टीम है और उनकी फील्डिंग तो बहुत ही अच्छी है। और उधर अगर पाकिस्तान की फील्डिंग देखिए तो हर मैच में वो 3-4-5 कैच छोड़ ही देते हैं, रनर भी छोड़ देते हैं, तो ये सब चीजों का पाकिस्तान को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो जो मौके आए हुए हैं हाथ में जो क्रूशियल उनको ना छोड़े।
ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल। खेल समाचारों में आज इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। अमरीका में कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग के प्रमुख जॉन सैंडर्स ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्हें यह पद संभाले अभी 2 महीने ही हुए थे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी नेताओं से अपील की है कि वे बहरीन में आयोजित कॉन्फ्रेंस में रखे गए आर्थिक प्रस्ताव को स्वीकार कर दुश्मनी खत्म करें। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। तो कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बीबीसी हिंदी की मल्टीमीडिया वेबसाइट के साथ। नमस्कार।